हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम राष्ट्र सुभावना हम संघ स्थान और सहयोगी संस्थाओं और स्वजनों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे दिन के सत्संग में आप सबका स्वागत है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य का अवतार लीला का श्रवण किया। भगवान का अवतार भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रह मतलब कृपा। ऐसे भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि सूर्य देव तो हजारों साल पहले हुए, आप तो मेरी उम्र के हैं, तो ये मैं कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। तो भगवान ने कहा बहुनी में जन्माने तब से अर्जुन तानी हम वेद सर्वाणी न तो मैं तत् परम तप। अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मेरे को सब याद है और तुम्हें जब सब भूल गए, बस यही अंतर है भगवान में और जीव में। तो अर्जुन ने जन्म शब्द को पकड़ लिया, बोला क्या आपका जन्म होता है? तो भगवान कहते हाँ, अजो भी जन्म आया, मैं अजन्मा हूं, मैं तो मेरी इच्छा से प्रकट होता हूं। तो अर्जुन मुझे क्यों प्रकट होती हो? तो भगवान ने पहले कह दिया यदा यदा ही धर्म से गिलानी, तो धर्म की जब हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म को स्थापन करने के लिए मैं आता हूं। अर्जुन ने कहा ये तो काम किसी और के द्वारा भी करा सकते हैं, किसी साधु संत को भेज के करा सकते हैं। तब भगवान को कहना पड़ा परित्राण है साधु नाम विनाशा, मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना। अर्जुन ने कहा साधु कहीं रक्षा करने, तो आप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव के रूप में आए फिर चले गए, आपके आने का उद्देश्य क्या है? तब ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च मे देव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति त्वत्। अर्जुन मैं जब आता हूं तो मेरा आना इतना अलौकिक और इतना अद्भुत है, और जब मैं यहाँ कुछ कार्य करता हूँ तो मेरी लीलाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि मेरे जाने के बाद भी लाखों सालों तक लोग उनका श्रवण वर्णन करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो असल में भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य अपनी मधुर लीलाओं को पीछे छोड़ के जाना है, जिसकी कथा कीर्तन श्रवण वर्णन से हम भगवान से अपना संबंध जोड़ते रहे। ये भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। अब एक बात आपको कल थोड़े से मैं बताई थी संक्षेप में कि श्री कृष्ण भगवान जिसके लिए भागवत में शब्द है एते चांश कलह पुंश कृष्ण स्वयं भगवान। 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद व्यास देव कहते हैं ये जो मैंने आपको गिनाए ना ये सब अंश है या कला है, ये भगवान का विस्तार है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौलोक अधिपति ब्रह्मा के एक दिन में 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं और रेगुलरली आते हैं, ब्रह्मा के हर दिन में आते हैं, और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के अवतार समय समय पर आते हैं। जब जरूरत पड़ती है उनका भी एक नेम बना हुआ है, लेकिन किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये जो 5000 200 साल पहले भगवान स्वयं श्री कृष्ण के आने का समय तो हो ही गया था, लेकिन साथ में पृथ्वी देवी की प्रार्थना क्षीर सागर में धर्म स्थापना के लिए भगवान को भी की गई थी, तो ये दोनों एक ही समय में बातें हो गई। ये संयोग हो गया कि दोनों बातें एक समय में हो गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं ना एक दिन में ब्रह्मा के, तो वो अपने साथ अपने सारे परिकर लाते हैं, एसोसिएट लाते हैं, और वो परिकर विशेष रूप से कुछ बड़े होते हैं जो भगवान को अपना बालक मान के वात्सल्य प्रेम करते हैं, कुछ बराबर के सखा होते हैं जो मित्रता भगवान से करते हैं, कुछ सेवक के भाव में आते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, और कुछ भगवान के अपने अंग से किया हुआ विस्तार गोप अंगनाएं होती हैं जो भगवान से माधुर्य रस का विहार करती हैं। तो श्री कृष्ण के विशेष अवतार का उद्देश्य चार प्रकार के संबंध जो जीव भगवान से जोड़े, जो उसको भूल गया है, उसकी इतनी मधुर लीलाएं करते हैं कि भक्त उसको सुन के मन में आता है ऐसा, अरे ये हमारा ही बालक हो तो अच्छा है, इसी को हम बालक मान लेते हैं, और ये ऐसा मित्र किसको मिलेगा, यही हम अपना मित्र बना लेते हैं। तो इस संसार में हमारे बंधन का कारण संसार के संबंध है, संसार के संबंधों ने हमको बंधन में डाल दिया है। भगवान दया करके कहते हैं यही संबंध तुम मुझसे जोड़ लो, यही संबंध मुझसे जोड़ लो, तो फिर आप सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान का विशेष, श्री कृष्ण के अवतार का ये विशेष विलक्षण विषय है। उस वक्त भगवान वसुदेव कृष्ण, जो वसुदेव और देवकी के पास कारागर में प्रकट हुए, चतुर्भुज में आए, वो तो अवतार है, लेकिन नंद और यशोदा के घर में जो नंद नंदन दो हाथ वाले श्री कृष्ण बाल गोपाल प्रकट हुए, ये स्वयं भगवान है। भाव का अंतर है सिर्फ, और कोई अंतर नहीं, लेकिन ये वसुदेव कृष्ण, वसुदेव जब लाए तो नंद नंदन कृष्ण में समा गए, दोनों एक हो गए। आज हम ये भी सुनेंगे जब श्री कृष्ण को कंस अक्रूर को भेज के बुलाएगा मथुरा, तब श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठे होंगे, अक्रूर जमुना में स्नान करेगा अक्रूर घाट में, और जमुना के अंदर उसको अनंत शेष और विष्णु दिखाई देगा, और फिर वो बाहर देखेगा कृष्ण बलराम को बैठा हुआ, दो बार आश्चर्य होगा। तब भगवान श्री कृष्ण पूछेंगे, काका कोई आश्चर्य हुआ क्या? बोला आपको देखने के बाद और क्या आश्चर्य हो सकता है। तब कहते हैं वहां से, उस सीमा से स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम अदृश्य रूप से तो ब्रज में ही रहे, लेकिन अवतार कृष्ण वसुदेव कृष्ण संकृष्ण के साथ मथुरा गए भाव में, तो वो सीमा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं एक कदम भी ब्रज से बाहर नहीं जाता, वो मेरा निज धाम है। दो कारण है। एक कारण तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी को कहा था मेरी छोटी बहन बन के यशोदा के वहां प्रकट हो, तो इसका बड़ा भाई होगा तब ना, छोटी बहन कैसे बनेगी, तो भाई होना चाहिए ना। और दूसरा लिखा है कि नंद भवन में जात कर्म संस्कार बच्चे का किया गया। जात कर्म संस्कार का अर्थ होता है मां से जुड़े हुए नाड़े को काटना। तो क्या कृष्ण को वसुदेव के नाड़े के साथ तो नहीं लाए होंगे ना? इसका मतलब है एक बच्चे का जन्म यशोदा के यहां भी हुआ। श्रीपाद वल्लभ संप्रदाय में और गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप से इस नंद नंदन कृष्ण के आविर्भाव का इन कारणों से मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद घर में भी जन्म हुआ, वो तो स्वयं भगवान आए, और अवतार लेना खीर सागर में रहने वाले वसुदेव कृष्ण, वो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में है, वो अवतार है, वो अवतार ही है, सारे अवतारों के सार है। विस्तार तो बहुत शास्त्रों में लिखा है, गर्ग संहिता ने तो बहुत विस्तार से इसको लिखा है, अपन कथा के समय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये सिद्धांत सिर्फ आपको बताना था। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य असल में न असुर मारना है, न धर्म स्थापित करना है, केवल अपने भक्तों के संग में मधुर लीलाएं करके
भक्तों को अपनी ओर आकर्षण करना है, ये उनका विशेष उद्देश्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे केवल 10.5 साल तक। 10.5 साल में 3.5 साल गोकुल में वात्सल्य लीलाओं का विस्तार किया, बाल लीलाओं से बड़े गोप गोपियों को सुख दिया। फिर 3.5 साल तक वृंदावन में क्षतिग्रह के पास रहे और तब गौचारण लीला करके सखाओं के साथ इतनी मधुर लीलाएं की कि पाप के मुंह में गए हुए अपने मित्रों को पाप से वापस निकाल के लाए। उनकी कई बार उनके ऊपर संकट आया और उनकी रक्षा की। और फिर 3.5 साल तक वो नंदगांव में, आयु 10.5 साल है, 9 साल है, अपने प्रेमी गोप अंगनाओं के साथ रास विहार किया, माधुर्य लीला का विस्तार करके आकर्षण किया जो भगवान से प्रेम करना चाहते। जब वो प्रसंग आएगा तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम चलते हैं अब गोकुल में। रात हमने गोकुल में नंद के घर आनंद भयो ये समाचार तो रात को 12 बजे हुआ। सुबह दूसरे दिन नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया। नंद उत्सव मनाया के बच्चे के जन्म की खुशी में पहले तो ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन किया, उनको गऊ दान किया, सोने से सजा कर गऊ दान किया। कितना किया? बोला जितना जिसको चाहिए उतना ले जाऊ, लाखों के हिसाब से किया। और फिर कई गाने वाले आए, कई प्रशंसा करने वाले आए। नंद बाबा का उधर नाम लिखा है महामना, मतलब इतना बड़ा दिल था कि दरवाजे खोल दिए खजानों के, राजा था, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। और ब्रजवासी तो ऐसे कहते हैं, कोई आदमी चांदी ले जा रहा था, किसी ने कहा क्या लाए हो? बोला चांदी। बोला उधर सोना मिल रहा था, वो चांदी उधर ही फेंक दी, जाया सोना उठा के आया। अरे सोना ले जा रहा है, उधर हीरे मोती थे, वो सोना उधर ही फेंक दिया जाके हीरे। ब्रज के अंदर गली गली में हीरा मोती सोना, ऐसे लक्ष्मी ब्रज के अंदर पूरी चारों ओर से साक्षात आ गई, ऐसा नंद का नंद उत्सव हुआ। उस नंद उत्सव का वर्णन ऐसा है कि इतनी उदारता से उन्होंने दान दिया कि बच्चा घर में आया है, बड़ी प्रशंसा उनको हो गई। फिर गोपियां सज धज के यशोदा के घर में बधाई देने आई, दही मक्खन दूध लाई, फिर एक दूसरे के ऊपर मक्खन दही का ऐसे डालना शुरू किया। कुछ मेरे जैसे पतले गोप फिसल के गिर गए। तो ये सब सबने जहां आनंद लिया उधर इस नंद उत्सव का, तो बड़ा सुंदर नंद उत्सव का वर्णन है कि पुत्र के जन्म के ऊपर नंद बाबा ने दिल खोल कर दिया। चिल के बड़े बड़े पहाड़ बना के उसके ऊपर हीरे मोती रतन डाल के जिसको ब्राह्मण को सबको दान दिया। तो ये बच्चों को दान, बच्चे के आने के ऊपर। और फिर नंद बाबा को विचार आया कि उत्सव तो बड़ा सुंदर हो गया, लेकिन कंस को भी प्रसन्न रखना चाहिए, उसको कर देने का समय हो रहा है, टैक्स उसको देके आनी चाहिए ताकि उसका मुंह बंद रहे। अब नंद बाबा ने अपने बड़े गोप ग्वालों को कहा कि दूध दही मक्खन अपने बैलगाड़ियों में भर लो, और नौजवानों को कहा आप तो न अब गोकुल की रक्षा में रहो, और स्वयं वहां से मथुरा आए। मथुरा में उन्होंने कंस को तो दूध दही जो उनका था वो कर दे दिया, और एक बगीचे में रुक गए और वसुदेव जी उनसे मिलने आए। नंद और वसुदेव का मिलन इतना अद्भुत, दो मित्रों का मिलन है। वसुदेव ने ये नहीं कहा कि मैंने कितना दुख भोगा, मेरे कोई पुत्र मारे गए, नहीं। उसने कहा नंद, इस उम्र में आपको पुत्र हुआ, क्या आपका सौभाग्य है? आपकी खुशी से हम बहुत खुश हैं। और नंद ने ये नहीं कहा कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, मैं खुद। बोला वसुदेव, आपने इतना संकट सहा है, हमें आपके दुख से बहुत पीड़ा हो रही है। इसको कहते हैं मित्र मिले तो अपनी बात न करें, दूसरे के भाव को जान के बात करनी चाहिए। और बहुत आनंद का जब आपस में परस्पर मिलन हुआ तो वसुदेव ने कहा कि आप जल्दी गोकुल जाइए, क्योंकि गोकुल में उत्पाद होने की संभावना है। तो वसुदेव तो क्षत्रिय था और वो राजनीतिक था, उसने कंस की चाल को सुना और जाना था कि कंस थोड़ी देर के लिए तो रात हमने आपको बताया था कि देवी ने जैसे उसको कहा, ये देवी के भक्त बड़े अच्छे होते हैं देवता, ये जो कंस जैसे लोग भी देवी को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन भगवान से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो देवी से इतना डर गया कि हाथ जोड़ के वसुधर देवी को जेल से भी निकाल दिया, लेकिन घर पहुंचा और चूर्ण अचान और मुस्ती का घास और बका दूर पूतना कटे हुए, बोला क्या महाराज धरना भोजराज, ये ब्रह्मा विष्णु को छोड़ के बाकी देवता तो आपके नाम से भाग जाते हैं, ये विष्णु भी क्या करेगा, कहाँ रहता है विष्णु, रहता कहाँ है, जहाँ ब्राह्मण रहते हैं, जहाँ गहू की पूजा होती है, जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ पाठ होता है वहाँ, अरे सारे ही मरवा देंगे तो विष्णु के लिए कोई जगह ही नहीं बच जाएगी, उसकी पूजा ही करने वाले नहीं रहेंगे। बाकी बालकों की जहाँ तक बात है महाराज, ये दो महीने में जितने बालक जन्म लिया है जहाँ भी सबको मरवा देते हैं, तो वो एक वो अपने आप मर जाए, ये योजना वहाँ बन चुकी थी। वसुदेव ने सूत रूप में कहा कि आप नंद बाबा जल्दी वापस जाइए, और नंद बाबा ने छकड़े यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार किए और उस तरफ गोकुल में चलते हैं, तो कंस की भेजी हुई आकाश मार्ग से जाने वाली खेतरी, खेतरी कहते खे कहते हैं आकाश को, आकाश के नंद सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, बाल घातनी, बाल का बच्चों छोटों का विष पीने, उस छोटे बच्चों का खून पीने वाली मारने वाली आकाश मार्ग से वो पूतना गोकुल में सज धज के सुंदर रूप धारण करके उतरी है, और ग्वाल बाल कहते हैं अरे नंद भवन में ये कौन लक्ष्मी है सरस्वती है, ये तो साक्षात कमला दुर्गा कौन है, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, योग माया ने भुला दिया ना, महामाया ने नहीं योग माया ने उनको भुला दिया, और सबसे पूछिए नंद का घर कहाँ है, और उसको पकड़ के नंद के घर में प्रेम से लाए, और छोटा नन्हा सा नील कमल कन्हैया ऊपर पीला पीताम्बर जीना जीना ओढ़ा हुआ है और सोया हुआ है, अभी छह दिन का भी नहीं है, और माँ एक तरफ यशोदा बैठी है, एक तरफ रोहिणी बैठी हुई है, दोनों माताएं पहले कृष्ण को देख के आनंद ले रही है, और जैसे इस सुंदरी को देखा तो उसको देखने शुरू कर दिया, और ये कौन देवी हमारे घर में आई, और इस पूतना सुंदर रूप में दोनों को देख के कहती है बच्चे कभी तुम्हारे घर में हुए हैं, बच्चे को देख रही हो चुपड़ चुपर दूध नहीं पिला सकते, जाओ मैं पिलाती हूं, वो बच्चा ले उठाया गोद में ले लिया पूतना ने, और अपना स्तन उसके मुंह में देने के लिए डाल दिया, और भगवान ने आंखें बंद कर दी, छोटे लाला ने आंखें बंद कर दी, इस भगवान के आंखें बंद करने के ऊपर 25 से अधिक कारण आचार्यों ने लिखे हैं कि क्यों आंखें बंद कर दी, पहले तो क्या छोटा बच्चा है, वैसे भी नया आदमी है तो आंखें बंद कर दी कोई बात नहीं, किसी ने लिखा है कि गोपाल ने आंखें बंद की, आई है माँ की तरह दूध पिलाने, और श्रृंगार पत्नी जैसा करके आई है, और इसका मुंह देखना अच्छा नहीं, और विष पिलाने आई है, तो किसी ने तो कहा भगवान ने कहा मैं आया हूँ दूध मक्खन खाने, और ये पहले ही विष लेकर आई है, तो ध्यान करके कहा हे भोलेनाथ विष पीना आपका काम है, आइए ये काम आप कीजिए, मैं इसका दूध पीऊंगा, आप प्राण दीजिए मैं दूध पी लूंगा, क्योंकि आपका प्रलय करना कार्य है। तो दोनों आंखों को बंद कर दिया कि एक आंख सूर्य है एक चंद्र है, तो सूर्य और चंद्र दो रास्ते ही मुक्ति के होते हैं, या तो देवयान मार्ग से जाएगी या फिर पितृयान मार्ग से जाएगी, लेकिन ये तो दोनों की अधिकारी नहीं है। भगवान ने आंखें बंद कर दी, और दोनों देवताओं ने कहा ये तो लायक नहीं है, भगवान की मर्जी जो इसके साथ व्यवहार करें, जो भी हो एक बहुत सुंदर भाव लिखे हैं इस आंखें बंद करने के। अब छोटे लाला ने पांव को चपका दी पूतना को, दोनों हाथ से स्तन को पकड़ लिया, और जैसे पीना शुरू किया दूध पीते पीते पूतना के प्राण को खींचने लगे, और पूतना को पीड़ा होने लगी, और पूतना कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोला तो नहीं छोटा कन्हैया था, बोला मेरा नैन है जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं, एक बार पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ता। अब तो वो एक खींचे इतनी बड़ी आकृति से छोटे बालक को हटा नहीं सकी स्तन से, और उसके छेदन के कोमल होंठों से उस बड़ी महान पूतना का प्राण निकल रहा, और वहां से भागी, ऐसे भगवान ने क्यों किया? बोला कि यही अगर ये अपने स्वरूप में आ गई तो मेरी माँ इसको देख के डर जाएगी, ये तो बड़ी भयानक डायन है, तो इसलिए कम से कम यहाँ से तो भागे, और ये भागेगी तब अपने स्वरूप में आ जाएगी, और स्वरूप में आ जाएगी तो ये तो 12 कोस की लंबी है, और कहीं हमारे गोकुल में गिरे और नंद बाबा के गौशाला गिरा दे, इससे अच्छा है कि कंस के बगीचे का सत्यानाश करेंगे। योजना ऐसी बनाई, अब पूतना यहाँ से भागी है, और भागते भागते जब बाहर आई जहाँ सुंदर बगीचा था कंस का, वहाँ गिरी और गिरते ही कहते अलके उसकी गिरी, जहाँ उसका नाम अलीगढ़ हुआ, हाथ जहाँ गिरा वो हथरस हुआ, और गर्व जहाँ गिरा वो आगरा हुआ। ये पूतना के जाके अंग अंग कई जगहों पे गिरे, और फिर भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती के ऊपर बैठे, यहाँ गोपियां तो पीछे भागी पूतना के, यशोदा तो मूर्छित जैसी हो गई कि ये क्या हो गया। भगवान की माता भी भगवान को लीला जो करनी थी, अब गोपियां भागती भागती वहां गई, और गोपियां देखा ये पहाड़ कहाँ से आ गया रास्ते में, यहाँ तो कल तक कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा पर्वत जैसे, और गोपियां बगैर भय भीत चढ़ गई इस ऊपर चढ़ के, देखा ये लाला तो खेल रहा है छाती के ऊपर, तो वो उसका स्तन पर्वत लग रहा है और छोटा लाला उसके ऊपर खेल रहा है। उतार के नीचे लाई, लाते ही नीचे गाय की पूंछ लेके, गाय की पूंछ से स्वस्ति वाचन करने लगी, फिर गाय का गोबर लेकर और सब विभाग अंग पे लगाया कि कृष्ण की रक्षा, यहाँ अच्युत करे, यहाँ गोविंद करे, यहाँ माधव करे, ऐसे सब। फिर विचार आया, अरे हम मुर्दे के ऊपर चढ़ी थी, हमने स्नान तो किया ही नहीं, ऐसे कैसे पूजा हो गई? तो फिर दोबारा वो सब अपना स्वस्ति वाचन करके और फिर दोबारा पूजा किया, और कन्हैया को लेके यशोदा को दिया, यशोदा तो मूर्छित जैसी थी, कन्हैया को छाती से लगाया, बच्चे ने दूध पिया, माँ ने कहा बच्चा ठीक है, यहाँ ये तो घर में शांति हो गई। नंद बाबा वहां से लौटते हुए रोड के ऊपर रोड बिलास देखा, ये कहाँ से, हम घर यहाँ से गए हैं तब तो रोड साफ था, आज इतना बड़ा ये कहाँ से पहाड़ आ गया। नजदीक गए तो देखा ये तो कोई मृतक शरीर है, अरे कोई असुर आया, वसुदेव सच कहता है, वसुदेव वह कोई देव पुरुष है, उसने जो कहा था सत्य था, अरे ऐसे करो जल्दी करो इसके आँख, इसके सारे अंग काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अब तो सारे गोप लगे काट काट के छोटे टुकड़े किए, लकड़ियां कटी की, और पूतना का अग्नि संस्कार हुआ। और लिखा है भागवत में कि उसके शरीर को भगवान ने क्या स्पर्श कर दिया, उसके उस अग्नि संस्कार से 10 किलोमीटर तक उग्रू की और सुंदर सुगंध होने लगी चारों ओर से, और लोग कच्चे होके देखने लगे कि ये क्या कौतूहल है। नंद बाबा जैसे पहुंचे वापस तो सबने कथा सुनाई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला के दान दिया, स्वस्ति वाचन कराया, हे भगवान ने हमारे बच्चे की रक्षा कर ली। ये पहली लीला हुई पूतना उधार लीला। श्री वल्लभ आचार्य कहते हैं पूतना अविद्या है, और श्री कृष्ण अवतार में पहले भगवान ने पूतना का वध किया, और राम अवतार में पहले ताड़ का वो मारेंगे। पहले दोनों एक स्त्री जो अविद्या के रूप में आती है, और भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ये पूतना जूठा गुरु है, जो आता है कहता है कि मैं आपको अमृत पिलाऊंगा, लेकिन पिलाता विष है, भगवान के पास ले जाने के बजाय संसार में भटका देता है। थोड़े दिन पहले हम एक जगह प्रचार करने गए थे तो देखा हमारे साथ कुछ भक्त चले, उनके मन में आया कि समुन्द्र का किनारा है, एक कहने बनाना बोट एक स्पोर्ट है, उसमें आगे छोटी बोट पे आदमी चलेगा, पीछे रस्सी में एक बोट है सीधी ऐसे बनाना जैसी, और 5-6 आदमी उसके ऊपर बैठेंगे, वो तेज चलेगा समुद्र में, और जब तेज चलेगा फिर एकदम टर्न खाएगा और सारे के सारे बनाने वाले पानी में गिरेंगे, उनको बंधे हुए होते हैं वो जैकेट, और उनको उसमें मजा आता है। और मैं उसको देखा, मैंने कहा इसको बोलते हैं जूठा गुरु, कहता है कि आपको तारूंगा, जब आधे में ले जाता है तब ऐसे करवट बदल के देख हमको अंदर करता। तो ये बनाना बोट में मैं देखा उन भक्तों को कि बार बार गिरे और खुश हो रहे हैं। तो ये जो दूध का दिखावा करे और विष लगा के आए, विष इसका अर्थ ये है अमृत पान कराना चाहिए गुरु को, भगवान के नाम का नाम अमृत देना चाहिए, लेकिन अगर वो स्वयं ही विषय भोग में, विष का मतलब विषय दे दे, विषय भोग दे दे अगर शिष्य को, तो उसका उद्धार कैसे होगा। तो ये जितने भी असुर भगवान श्री कृष्ण यहाँ जिनका उद्धार करेगा, एक के ऊपर भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा, किसी को हाथ से, किसी को होंठों से, किसी को पांव से, ऐसे ही सबका उद्धार कर देंगे। और जिनका उद्धार करेंगे वो तो कर ही जाएंगे। सूचना को मां का स्थान दे दिया। विशेष इसमें शिक्षा ये है कि जब एक विष लगा के राक्षसी आई, उसको मां का स्थान दे दिया, तो जो गोपियां प्रेम से कृष्ण को दूध पिलाती हैं, जो गाय कृष्ण को दूध पिलाती है, तो मां यशोदा की क्या बात करनी, उसकी क्या गति होगी। एक तो ये दिखाना था कि जब इतने नीच का भी इतना भला कर सकते हैं भगवान को, जो प्रेम से सेवा करते हैं, उनका सौभाग्य कितना बड़ा होता है। और दूसरा ये दिखाना कि भगवान किसी में बुराई नहीं देखते हैं, केवल अच्छा ही देखते हैं। पूतना के विष को नहीं देखा, पूतना के स्तनपान के भाव को देखा। गर्ग संहिता में लिखा है कि बलि महाराज की बहन रत्नावली, जब बलि महाराज को आते देखा था यज्ञ में, तो उसकी सुंदरता को देख के मन में आया कि ऐसा मेरा बच्चा होना चाहिए, मेरा बेटा ऐसा होता तो। और जब बलि महाराज को नाग हाथ में बांध दिया, तब आया इसे तो विष दे के मारना चाहिए। तो दोनों भाव मन में आ गए, वो पूतना बन गई। मां का भाव तो था ही, लेकिन विष देने का भी भाव आ गया। भगवान ने बोला तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी कर लेंगे। तो ये पूतना के उद्धार के बाद 3 महीने में बच्चा थोड़ी सी करवट बदलता है। बच्चे के जन्म नक्षत्र का दिन आया, माँ बड़ी खुश हो गई कि बच्चा अपने आप करवट बदलने शुरू कर दिया। माँ ने बहुत बड़ा उत्सव किया, सब स्त्रियां घर में आई, और प्रतिदिन उत्सव होता है सनातन वैदिक संस्कृति में, रोज उत्सव होता है। और उत्सव में सब अंदर चले गए, और जिसका उत्सव हो रहा है उस छोटे लाला को कहाँ रखा, बाहर आंगन में एक बड़ा छकड़ा, छकड़े का मतलब बड़ी लकड़ी की बैलगाड़ी, उसके ऊपर रखे हैं बर्तन, बर्तनों में दूध दही रखा है, फिर खाली बर्तन उसके नीचे सुला दिया। और छोटे बच्चों को कहना आप देखभाल करना, रोए तो मुझे बुलाना। और ये अंदर में सब पार्टी करने लगे। भगवान ने बोला उत्सव मेरा मना रहे हैं, महल मेरे नाम का खा रहे, मेरे को बाहर डाल दिया है और स्वयं अंदर मौज कर रहे हैं। एक बार मैं रस राज, और मेरे ऊपर ये रस रखे हैं, गौरख मेरे ऊपर रख दिए, मैं चेतन ये जड़ मेरे ऊपर जड़ रख दिया है। तो संसार में हम चेतन हैं और धन जड़ है। जब धन हमारे सर के ऊपर चढ़ के बोलता है, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा भाव किया। उस वक्त एक अदृश्य रूप में असुर, उसका नाम था शक्तासुर, उसने उस लकड़ी के अंदर प्रवेश किया। कंस ने भेजा था कि अब ये छकड़ा नीचे दबाएगा और कृष्ण इसके नीचे दब जाएगा। कृष्ण ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए न पांव लंबा किया, बस अपने छोटे पांव को एक्सल को लगा दिया जो बीच में पहिए के पास, धड़ाम से छकड़ा नीचे गिरा, सारे बर्तन, बहुत बड़ा आवाज हुआ, गोपियां सारे अंदर से बाहर, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, किसने गिराया, बड़ा आश्चर्य लगा। वो छोटे बच्चे जो खड़े थे 2-4 साल के, वहां किसने गिराया, ये इतने गिराया, ये इतने पांव मारा, इसने पांव मारा है, इतना बड़ा छकड़ा ये बच्चा कैसे गिरा सकता है। बच्चे सच बोल रहे थे, कोई नहीं उसकी बात माने। और फिर कैसे ये भगवान ने बचा दिया, बच्चा तो हमारा बच गया, फिर गोद में ले लिया, फिर दान धन कर दिया, फिर आनंद का माहौल हो गया। ये अब 1 साल के करीब गोपाल हो गया, माँ उनको गोद में लिया हुआ है, और मन में आया कि अब घर का कुछ काम करना चाहिए। और उठाई रही थी तो भारी होने लगी, इतने भारी हो गए कि माँ से उठे नहीं, माँ ने नीचे रख दिया। माँ ने जो नीचे रख दिया, उस वक्त एक चक्रवात वनमंडल के रूप में एक असुर आया, उसका नाम था तृणावर्त। वो काम जैसे आता है ना, काम आता है चक्रवात की तरह, आदमी को उड़ा के ले जाता है, और फिर जब गिरता है तब आदमी पता पड़ता है। तो ये सारे असुर कोई ना कोई दोष है, इन सब दोषों को भगवान ने निवारण किया है। तृणावर्त में कृष्ण उठा के ऊपर ले गए, कृष्ण ने उनको गले को पकड़ लिया। गले में बच्चा छोटा कहाँ पकड़ेगा, बच्चे को उठा भाई एकदम गले को पकड़ेगा। गले को जब पकड़ लिया, पहले तो भगवान को बड़ा मजा आया कि तो अच्छा है, मेरे को ऊपर घुमा रहा है आकाश में। जब ऊपर थोड़े गए तो देखा कि मथुरा की तरफ जा रहा है, तो भगवान थोड़े भारी होने लगे। तो तृणावर्त ने कहा, ये तो जो गले में पत्थर किसने, मेरे को ये काला पत्थर किसने बांध दिया, हो इतना भारी हो गया, और ऐसे इतना भारी होगा कि घूम के उल्टा लौटा, और लौटते ही नंद के भवन के बाहर एक पत्थर के ऊपर सर जाके उसका लगा, तृणावर्त से तो प्राण निकल गए और कृष्ण उसके पास में बैठे हुए, गोपियों ने आके पकड़ के फिर पकड़ लिया। कहा देखो भगवान कैसे नारायण ने हमारे बच्चे की रक्षा की। तो यहाँ तृणावर्त का उद्धार का वर्णन है। ये पूतना और तृणावर्त कभी जाएंगे नंदगांव में तो वो स्थान है जहाँ ये दोनों आए थे और जहाँ वो गिरे थे, वो जगह है कि तृणावर्त यहाँ आके गिरा था। तो ये एक काल भगवान का हो गया। एक दिन यशोदा दूध पिला रही है, माँ के मन में आया कि ज्यादा प्रेम से दूध तो अपने आप आ रहा है और बच्चा ज्यादा पिएगा कहीं अपचन हो जाए, तो बच्चे को प्रेम करके छुड़ाना लगा। बच्चे ने मुंह खोला और मुंह के अंदर यशोदा को पूरा विश्व दिखा। भगवान ने ये सिखाया, माँ मैं अकेला थोड़ी दूध पिया रहा हूँ, मेरे पेट में पूरी दुनिया समाई हुई है, तुम क्यों चिंता करती हो कि मेरे पेट में खराबी कैसे होगी। मेरे पेट में तो पूरी दुनिया समाई हुई है, ये दुनिया तो जब प्रलय होती है मेरे पेट में आती है, मुझसे ही सब निकली है। अब माँ ने कहा कि और इतने वक्त में वसुदेव ने विचार किया, बच्चे मेरे दोनों गोकुल में पल रहे हैं, अभी तक नाम संस्कार तो हुआ नहीं, और बच्चे का संस्कार नहीं होगा तो संस्कृति और धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों का संस्कार टाइम से कराना चाहिए, नाम टाइम से नहीं रखेंगे तो फिर उसका नाम कुछ ऐसा गुड्डू गुड्डू टिप्पू पिप्पू हो जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या है नाम, नाम ही उसका बिगड़ जाएगा। तो समय से नाम, तो वसुदेव ने अपने आचार्य गर्ग आचार्य को भेजा। गर्ग आचार्य नंद के घर में आए, नंद बाबा ने कहा हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, ये तो इतना बड़ा महान ज्योतिष आचार्य गर्ग ऋषि आए हैं। स्वागत किया और कहा कि आप पधारे हैं तो एक हमारा काम कीजिए, हमारे दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्ग आचार्य कहता मैं तो आचार्य यशुवंश का हूँ, मैं नाम करूंगा, आप लोगों को बुलाएंगे, बड़ी पार्टी करेंगे तो कंस को पता लग जाएगा, आपके लिए ये अच्छा नहीं है। समझ गए नंद बाबा ने कहा ठीक है, किसी को नहीं बुलाऊंगा, गौशाला में डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, पहले पवित्र गोबर लगा हुआ है, बस ये दो माँ बच्चों को ले चलेंगे, मैं चलूंगा, आप चल के नामकरण कर लो, किसी को बताएंगे नहीं। गौ वाले गाय लेके चले गए हैं, अब कोई नहीं है, दोनों बच्चों को गौशाला में ले गए और गोद में बच्चे बैठे हैं। गर्ग आचार्य कहते हैं ये रोहिणी के गोद में जो बच्चा है ये बड़ा बलशाली होगा, इसको बलदेव कहेंगे, ये सबको सुख देगा, इसलिए राम कहेंगे, और ये दो बड़े कुलू को जोड़ेगा, इसलिए इसको संकर्षण कहेगा, ये यदुकुल को जोड़ेगा, गोकुल को यदुकुल को आपस में जोड़ेगा, दो बड़े कुलू को जोड़ेगा, इसको संकर्षण कहेंगे, और ये सामना सलोना ये सबको आकर्षण करेगा, इसका नाम कृष्ण, और इसको वासुदेव जी कहेंगे। और फिर बहुत होशियारी से गर्ग जी कहते हैं ये पहले वसुदेव के पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए हैं, और नंद ये जो आपका बच्चा है ना, फिर एकदम का नंद जो आपका बच्चा है ना, तो ऐसे बड़े बुद्धिमानी से नामकरण संस्कार इन बच्चों का हो गया। और इसके बाद ये कहां की लीला हो रही है, गोकुल में, ये गोकुल में लीला 3.5 साल तक होगी, 3 साल 4 महीने कुछ दिन तक। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े घुटनों के बल चलने वाला शुरू किया, घुटनों के बल चले तो गोबर में चले जाए, माँ गोबर से उठा के लेके आ जाए, फिर बछड़ों की पूछ पकड़ लें, बछड़े भागे उनके साथ चल जाए, तो ये छोटी छोटी बच्चों की लीलाएं होने लगी, और गोपियों के घर में छोटी छोटी माखन चुराने की लीलाएं भी शुरू कर दी। तो ऐसे कहीं सुखदेव गोस्वामी ने नहीं दिखाया कि कृष्ण ने चोरी की, उसने इतना ही दिखाया कि गोपियां उल्हाना देने के लिए यशोदा के घर आ जाती थी, और गोपियों को बहुत अच्छा लगता था, गोपियां पहले जाती थी कृष्ण को कहती थी आप सब छोटी छोटी बच्चे हमारे घर आना, बहुत अच्छा मखन बना है, और जब घर में आते थे भगवान तब कहती चोरी क्यों करने आई, उनको किसी बच्चे को छेड़ने में जैसे बच्चों को मजा आता है ऐसे गोपियों ने किए। इसलिए कभी कहते हैं कि जो प्रमाण वेद का है वो भगवान भी मानते हैं। एक बार शिकायत को कर दी यशोदा को कि हमारे घर में मक्खन चोरी करता है, तो यशोदा ने पहला तो कहा आप दे दिया करो, कितना मक्खन खाएगा, छोटा तो बच्चा है। एक दिन गोपियों ने कहा लाला मक्खन खाएगा क्यों, मैं भीख मंगाऊं तुम्हारे घर का काम, मेरे घर में नहीं है मक्खन, गाय दूध नहीं है क्या, तो बोला फिर चोरी क्यों करते, बोला मेहनत करके खाता हूँ, मुझे थोड़ी खाऊंगा, कितना उखल उठाता हूँ, फिर चीखे के ऊपर चढ़ता हूँ, चार भक्तों ऐसे मुख्य नहीं खाऊंगा ना, मेहनत करके खाऊंगा। तो एक दिन तक यशोदा ने कहा अगर तुम्हारे घर में खाता है तो पकड़ के ला के दिखाऊंगा, गोपियों ने सब एक बड़ा षड्यंत्र बनाया, कृष्ण को बुलाया कि आओ हमारे घर। मधुमंगल आया, सौ कृष्ण आया, श्रीधामा आया, सुधामा आया, सब इकट्ठे होके घर में कूद पड़े मक्खन खाने के लिए। तो गोपियों ने बाहर से कुंडी बंद कर दी दरवाजे की। दरवाजे की जो कुंडी बंद हुई, आवाज तो हुआ, कुंडी बंद होने सब खिड़की से कूदे। छोटे बच्चे भागे, वो ब्राह्मण एक जो ब्राह्मण एक तो मेरी तरह छोटा पतला था बेचारा, एक चांस थी कि वो खिड़की में अटक गया। अब खिड़की में जो अटक गया तो गोपियों ने उसको पकड़ा, बोला अब इसको बनाओ, इसको होस्टेज बनाते हैं, और उसकी चुटिया में बांधी रस्सी, और रस्सी को पेड़ के ऊपर लेके ऐसे खींचा। अभी उसकी चुटी खींचे, ओए कन्हैया, अब तो कन्हैया को बुलाए ये बेचारा मधुमंगल। कन्हैया भागते हुए आया, गोपियों को कहते तुम्हें मालूम नहीं है ये कोई गोप बालक थोड़ी है, ये तो ब्राह्मण है। अब तुमने ब्राह्मण को तकलीफ दे दी, तुम्हारे को बूढ़े पति मिलेंगे। गोपियां बेचारे डर गई कि ये क्या होगा, ये फिर क्या करें। बोल जाओ घर से लड्डू लाओ, इसको यहाँ बिठा के पूजा करके इसको लड्डू खिलाओ। अब तो सारी गोपियां भागी घर से, लड्डू लाई, उसको छुड़ा दिया। ये बरसाना के पीछे चिक्सोली गांव है, वहां विशेष लीला हुई। एक दिन गोपियों ने कहा कि आज तो इसको रंगे हाथों पकड़ना है, रंगे हाथों इसको पकड़ के दिखाएंगे। गोपियों ने क्या किया कि सब जगह घंटियां बेल बांध दी, खिड़की में, दरवाजे में। अब के अंदर कूदेगा कहीं से तो घंटी बज जाएगी, घंटी बज जाएगी तो हम पकड़ लेंगे। अब कृष्ण अपने साथियों के साथ आते ही सारे घंटियां बांधे, गोपी बड़ी होशियार हो गई, समझती है कि घंटी बजेगी। भगवान ने घंटू के देवता घंटाकरण को बुलाया, हे घंटाकरण इन घंटियों को बोलो यही नहीं बजनी चाहिए। अब बद्रीनाथ में जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर के लेफ्ट साइड में घंटाकरण का मंदिर है, वो क्षेत्रपाल का है वहाँ का, उसके कन्हों ने वो घंटा, वो घंटियों का देवता है घंटाकरण। तो घंटाकरण ने घंटियां सब बंद कर दी, कूद गई घंटी नहीं बजी, छीका उठाया घंटी नहीं बजी, उखल में घंटी थी नहीं बजी। कन्हैया ऊपर चढ़ गया, माखन उतारा, बाल बाल खाओ, आप खाओ, आप खाओ, सब खा रहे हैं। तो कुछ बंदर ऐसे करने लगे क्योंकि माखन अच्छा नहीं है। क्या कन्हैया ने अपनी एक उंगली मुख में डाली चखने के लिए और सारी घंटियां बज गई, जोर जोर से घंटियां भगी। कन्हैया ने बोला घंटाकरण घंटियां क्यों बज गई। अब घंटाकरण कहता है भगवान किसकी बात माने, आपने लिखा है शास्त्र में भगवान को भोग लगे तो घंटी बजी, ये तो आपको भोग लग रहा था, दूसरे खाते हैं तो खाने दो, लेकिन आप खाएंगे तो घंटी तो बजेगी। हम तो शास्त्र की बात माने कि आपकी माने, घंटी जो बज गई। गोपियां आई, गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के गोपी ने बांधा, बांध के दूसरी गोपियों को बुलाने गई। दूसरी गोपियां जब तक आई वापस आई तो कन्हैया खुला पड़ा है, बोले तुमको मैंने बांधा था, तेरे को बांधना नहीं आता। बोला कैसे बांधते, बोले खड़ी हो जाओ। गोपी खड़ी होकर उसको बांध के हरी बोल भाग गया। अब गोपियों को भी इसमें मजा आने लगा, तो एक दिन गोपी ने पकड़ लिया, पकड़ के हाथ में, आज तेरे को रंगे हाथ पकड़ूंगा, चल चल तेरे को तेरी माँ के सामने दिखाऊंगा कि तुम चोरी करने हमारे घर में आते हो। बाहर निकली, सामने से नंद बाबा उपनंद कोई बूढ़ा बूढ़ा वो पा रहा था, उसने बड़ा घूंघट निकाल के कमर नीचे किया, ये बोला देखो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो ना। वो एक हाथ हथुड़ाया, दूसरा हाथ पकड़ लो ऐसे कह दिया, और गोपी तो घूंघट में ही गई। और यशोदा देखो मैया देखो तेरे लाले को लाल रंगे हाथ में पकड़ा है, मक्खन खाते हुए पकड़ा है। यशोदा हंस रही है कि देख तो सही किसका बच्चा लाई है, क्या किसका बच्चा, क्या तेरा बच्चा, अभी खा रहा था, अभी पकड़ के लाई है। यशोदा और जोर से हंसने लगी, क्यों हंस क्यों रही, देखो ना सही किसका, देखा अपना बच्चा पकड़ के आई। वो हाथ का दर्द का बहाना किया, अपना हाथ छुड़ा के उसके बच्चे का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब तो वो भी अपने बच्चे को जो पकड़ के लाई, बिचारी को शर्म आया, बाहर निकली तो कन्हैया दूसरी तरफ से घूम के आया, रेलवे ऐसे कर रहा था, और फिर कहा इस बार तुमने पकड़ा था तेरे बच्चे का हाथ दिया, अगली बार तुमने ऐसे पकड़ा तेरे पति का हाथ पकड़ा दिया। तब से गोपियों ने कन्हैया को माखन के लिए पकड़ने का काम ही बंद कर दिया। अब घर में चोरी करना शुरू कर, मां गई बाहर काम करने, हाथ पूरा मक्खन, मुंह में मक्खन। भैया ने कहा अब तो घर में चोरी करता है, बोला ना मां कहां चोरी करता हूं, ये देखो लाल लाल कंगन तुमने डाला है पदम राग का, इतना हाथ जल रहा था, इसको ठंडा करने के लिए मक्खन में डाला था, ये ठंडा हो गया। बोला हाथ ठंडा करना था तो मुख में कैसे लगा, बोला मक्खी बैठी थी, इसको हटाया था ना इसलिए लगा।
अब बच्चों को, बच्चे को भी आनंद आए, माँ को भी आनंद आए, ये बाल लीलाएं हो रही हैं। तो इन लीलाओं में माखन के लिए गोपियां उलहना दे, यशोदा को दुख नहीं हुआ। एक दिन बच्चों ने आगे कहा कि जमुना जी के तट पे कन्हैया मिट्टी खा रहा है। अब तो माँ ने कहा मिट्टी खाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मक्खन खाएगा तो अपना खाए या पराया खाए स्वस्थ अच्छा रहेगा, लेकिन मिट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। माँ घर से लाठी उठाई और दौड़ती हुई गई, कन्हैया सब ग्वाल बाल कहते तुमने मिट्टी खाई? बोला नहीं खाई, झूठ बोलते। बोले दाऊ दादा कह रहा है, बलराम कह रहा है। बोला सब मेरे शत्रु हो गए हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। लाठी हाथ में, तुम नहीं मानती हो मैंने मिट्टी नहीं खाई है? कहता हूं नहीं मानती, मेरा मुंह देखो। कृष्ण ने कहा कि मेरे मुंह से एक बार इसने देखा था, वो तो भयभीत हो गई कि खुलवाएगी नहीं, उन्होंने खुलवाएगी नहीं। मां ने कहा खोलो मुंह, देखती मुंह खोले तो अंदर पूरा ब्रह्मांड देखने में आया, बहती हुई यमुना दिखी, यमुना के किनारे कृष्ण देखा और कृष्ण मुंह खोल के बैठा है और यशोदा उसको देख रही है। यशोदा तो लाठी हाथ से नीचे गिर गई, कहीं मेरे बेटे को भूत क्या गया है, इसके मुंह में ये क्या दिख रहा है? बड़ी चिंता में हो गई कि इसको भूत लगा है, कोई प्रेत लगा है, अभी भी भगवान नहीं मान रही है। तब भगवान ने देखा मेरी माँ अब थोड़ी सी, मेरे को अगर भगवान मान लिया तो घर में जाके कहीं बिठा के आरती करना शुरू कर दी तो बाहु बालों के साथ घूमने तो जा नहीं सकूंगा। तो एकदम वो माया हटा दी, यशोदा ने ऐसे गोद में उठा दी, कहा हे मेरे बेटा। और वहां से 1 किलोमीटर दूर, ब्रह्मांड घाट से 1 किलोमीटर दूर चिंताहरण घाट है, जहाँ चिंताहरण महादेव का मंदिर है, वहां जाके यशोदा बैठी के चिंता मारी हरण हो जाए, थोड़ी पूजा की कि भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करो। भयभीत हो गई, मट्टी खाई है भगवान, इसके ऊपर 20-25 कारण लिखे हैं कि भगवान ने मट्टी क्यों खाई। ये रज है ना, मिट्टी को रज कहते हैं ना, भगवान कहते हैं अभी बहुत असुरों को मारना है, थोड़ा रजोगुण भी तो चाहिए ना, तो रज तो मुंह में डालूंगा तभी तो किसी को मारूंगा, नहीं तो मैं शुद्ध शत्रुगुण में किसी को मारूंगा कैसे। और फिर इतना मीठा खिलाते हैं मक्खन, कभी तो थोड़ा नमकीन खाना चाहिए, अच्छी बहुत मिट्टी नमकीन है, ये तो खा के थोड़ा सा मुख में डालनी चाहिए। बच्चे वैसे मिट्टी खाते हैं, उसमें जब कोई चीज की कमी होती है तो वैसे कारण बड़े अद्भुत लिखे हैं। अब उतना समय अपने पास इसको करने का नहीं है कथा। परीक्षक महाराज कहते ऐसा क्या सौभाग्य इस यशोदा का है कि ये भगवान साक्षात इसके मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखे, वो उसका स्तन पी रहा है। सुखदेव महाराज कहते हैं एक धरा और द्रोण वसु द्रोण और उसकी पत्नी धरा ब्रह्मा जी को प्रार्थना की थी कि हमें भगवान की बाल लीलाओं का सुख मिलना चाहिए, तो ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से उनको ये सुख मिल रहा है। और फिर सुखदेव कहते हैं आप इतने में आश्चर्यचकित हो गए, इस गोपी ने इस भगवान जिसको ब्रह्म है साक्षात पर ब्रह्म इसको बांध दिया था। यहाँ उखल बंधन की लीला का वर्णन आता है और उखल बंधन की लीला हुई है दिवाली के दिन, उमावस का दिन था, कृष्ण 3 साल का बालक है। यशोदा ने कहा गोपिया रोज कहती है कि मेरे घर में माखन चोरी करता है, तो हो सकता है माखन मेरी ये जो सेवकाएं घर में बनाती है इसको इतना अच्छा नहीं हो, आज मक्खन मैं स्वयं बनाने जा रहा हूँ। मैं ये लीला थोड़ी बहुत संक्षेप करूंगा क्योंकि ये केवल दामोदर लीला 3-4 दिन में करते हैं, 2 अध्याय हैं, लेकिन 5 दिन इस लीला को अगर आत्मादन करने में 3-4-5 दिन लगते हैं, इतना ये मधुर लीला है। ये सबसे परिकाष्ठा की लीला है वात्सल्य रस की, वात्सल्य प्रेम की सबसे उत्कृष्ट लीला ये, इतनी अद्भुत है कि भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। तो यहां मां ने कहा कि मैं स्वयं अपने हाथ से मक्खन निकालूंगी, और माँ ने अपनी विशेष गायों का दूध पद्मगंधा गाय को पिलाया, उस गाय के दूध को रात को स्वयं गर्म किया, फिर उसमें जामन डाला, सुबह 4 बजे उठी और पीले रंग की बहुत सुंदर साड़ी देशी, वो भी पुष्पों से अलसी के पुष्पों की बनी हुई साड़ी पहनी, और फिर कमर में पट्टा बांधा, कानों में कुंडल डाले, हाथों में कंगन डाले, सर के ऊपर मालती के फूल डाले और बड़ा मटका सामने रख के और पीड़े के ऊपर बैठ के और मंथन करने लगी, और मंथन के साथ साथ
कृष्ण के गुणगान करने लगी, शरीर से मंथन कर रही है, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही है, आज मेरे हाथ का माखन खाएगा, फिर देखूं कैसे जाता है किसी के घर में, और गा रही है कि एक दिन क्या आकाश में चंद्रमा को देख लिया, कहता है मेरे को माँ वो ला के दो, तो किसी गोपी ने कह दिया कि वो मक्खन है, बोला मैं यही मक्खन खाऊंगा, जैसे ना भाई ये झूठ बोल रही है, मक्खन में देखो विष लगा हुआ है, ये विष के साथ निकला है, कोई नहीं खाता है, इसलिए इतना बड़ा पड़ा है अभी तक, बोला मैं तो मक्खन ही खाऊंगा, मुझे यही मक्खन चाहिए, ये मक्खन नहीं है बेटा, तो फिर क्या है मेरे को ला के दो, मैं खिलौना खेलूंगा, ऐसे जो गीत बना के रखे थे कृष्ण के बचपन के, वो मां गा रही है। पलंग के सोए हुए कृष्ण कहते हैं माँ मेरे गीत गा रही है, और मैं उठ के उसके पास नहीं जाऊं तो नारद को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा, मैंने नारद को कहा है यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं मैं वहां आ जाता हूँ, ये मेरी माँ ही मेरे गुणगान कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊं तो लोग विश्वास थोड़ी करेंगे। कन्हैया उठा, आंखें मछली, माँ माँ किया, माँ ने आवाज सुना नहीं, पलंग से नीचे उतरा, चल के आगे आया, देखा तो माँ की आंखें बंद है और पसीने से शराबुर है, पसीना बह रहा है माता जी को, और उसके फूल नीचे गिर रहे हैं, और कृष्ण के बच्चे के पीठ के कारण स्तन में से दूध चूके बाहर आ रहा है, वो दूध कहता है आज इसका मक्खन खा लिया तो मेरे को पिएगा नहीं, और मैं ऐसे बेकार में यहाँ क्या रहूं, तो मेरे को देखेगा तो मेरी तरफ उसका मन आ जाएगा। कन्हैया आया, माँ माँ माँ, तो उस आवाज में सुना नहीं, कन्हैया बोला इसको आकर्षण, एकदम मंथनी को ऐसे पकड़ लिया, मंथनी को जब पकड़ लिया काम रुक लिया, यशोदा ने आंख खोल ली और मुस्कुराई, बच्चे में शक्ति है, देखो इतना बड़ा मंथनी को पकड़ लिया, 10 किलो के दही को मंथन वाली मंथनी को पकड़ लिया, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है, खुश हो गई, माँ मुस्कुराई और बच्चा गोद में अपने आप चढ़ गया, चढ़ के अंक में बच्चा आया और माँ ने अपना स्तन दिया और मटके के ऊपर कपड़ा डाल दिया। कृष्ण ने कहा इतना बड़ा परिश्रम मेरी माँ कर रही है, पसीना पसीना हो गई है, ये मटके का मक्खन आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो माँ तुम्हारा दूध पीऊंगा, कॉम्पिटिशन हो गई माँ में और बेटे में, माँ कहती तुमको मक्खन मेरा बनाया हुआ खाना पड़ेगा, और कृष्ण कहता नहीं मैं आपका दूध पीऊंगा, असली आपका हृदय जो पिघल के मेरे लिए बाहर आ रहा है, और कृष्ण को प्रेम से माँ दूध पिलाने लगी, कृष्ण माँ को मुस्कुराहट देने लगा और माँ कृष्ण को दूध दे रही है अपने हृदय का, माँ कृष्ण के मुख को दे रही है और कृष्ण माँ के मुख को बार बार देख रहा है। ये जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध हो जाता है, ऐसा संबंध हो जाता है कि 1000 बच्चों में के रोने में माँ अपने बच्चे के रोने को पहचान लेती है, और बच्चा 1000 स्त्रियों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ये संबंध कब स्थापित होता है? जब माँ प्रेम से बच्चे को दूध पिलाती है, और अब जब वो दूध पिलाती है तब माँ के हृदय से संस्कार, संस्कृति, धर्म बच्चे के अंदर जाते हैं, क्योंकि माँ का प्रेम, एक माँ है जिसका प्रेम पिघल के दूध बनता है, पिता भी प्रेम करता है, दादा दादी ना, लेकिन किसी और को दूध नहीं बनता है, सिर्फ माँ के ही स्तन में दूध होता है बच्चे के लिए, वो उसका प्रेम पिघल के द्रव्य हो जाता है। लेकिन आजकल माता जी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, और कुछ लोगों ने उनको गलत बता दिया कि सुंदरता खराब हो जाएगी बच्चों को दूध पिलाएंगे, तो बच्चे को किस चीज से दूध पिलाते हैं आजकल? कैसे दूध पिलाती है माता जी लोग बच्चों को? क्या चीज से? बॉटल से? तो क्या होगा सुन लो, बच्चा बातों को पकड़ जाए, मेरी माँ बहुत अच्छी है, ऐसा प्यार हो जाएगा बोतल से कि 8 साल का कोको कोला हाथ में लेके घूमेगा और 25 से पहले ही जानी वाकर पकड़ेगा। अरे ये क्या कर रहा है? अरे माँ तूने मेरे को बोतल से प्रेम सिखाया, और 50 से पहले ग्लूकोज की बोतल लटकी होगी, देखता देखता यहां से रवाना होगी। बोतल से जीवन शुरू और बोतल से समाप्ति होगी, इसलिए बच्चों को प्रेम से दूध पिलाओ, उसमें संस्कार, धर्म और संस्कृति और अच्छे गुण सब जाते हैं, और माता ने भगवान को ये बहुत बड़ा एक प्रेम पिघला हुआ दिया है, और बच्चे के जन्म से पहले भगवान उसी के लिए भोजन तैयार करता है। माता प्रेम से दूध पिला रही थी और अंगेठी के ऊपर चढ़े हुए दूध ने कहा कि ये सारा दूध माँ का पिएगा तो मैं अग्नि के ऊपर ताप रहा हूँ, अपने को तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पिएगा, इससे अच्छा है कि मैं आपघात करके अग्नि में जाऊं। तो माँ ने दूध को गिरते हुए देखा, कृष्ण से नजर हटाई, दूध के ऊपर नजर गई, माँ ने कृष्ण को नीचे रखा, और यहां से आप देखते चले, कृष्ण से नजर हटी दुर्घटना घटी। जहां भी आप देखेंगे कृष्ण को देख रहे हैं, अब यशोदा और रोहिणी कृष्ण को देख रही है, नजर हट के पूछना में गई दुर्घटना घटी। घर में काम करने का मन हुआ दुर्घटना गई, काम पे मन किया दुर्घटना हट। यहां दूध को देखा दुर्घटना शुरू। तो आगे देखेंगे कृष्ण से नजर हटी दुर्घटना घटी। ये फार्मूला सीधा एक मान लो। मां दूध को उठाने के लिए गई, कृष्ण को नीचे रख दिया, बोले ये मेरा दूध है बाद में पिला दूंगी, वो इसके लिए रबड़ी बनानी है तैयार करना है, अभी उसको तो उतारना ही चाहिए, वो तो भक्त है भगवान की सेवा में लगना है। उधर जाके मां ने पानी ऊपर से डाला, दूध ने मुंह लटका के नीचे वापस तक चला गया तपेले में। बोला क्या मैंने मां और बेटे के प्रेम में बाधा डाल दी, मुझे तो शर्म आनी चाहिए, वो तो नीचे गया। कृष्ण ने कहा मैं क्षीर सागर छोड़ के इसका बेटा बना हूं और ये 2 किलो दूध के लिए मेरे को नीचे पटक के चली गई है, देखो तो सही अन्याय है कि नहीं है। दूध सागर में शयन करता था उसको छोड़ के आया, दिखाता हूं मेरी मां को मैं क्या कर सकता हूं। और उसने इधर देखा उधर देखा, देखा एक मसाला पीसने का इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, उसको उठाया अपने हाथ के कंगन को ऐसे पकड़ा, इसे देख के नीचे जहां भरा हुआ मटका है ठा मारा और मटका फूटा और दही बहा और खुश हो गया कि अब माया को पता लगेगा कि तेरा सारा मटका फोड़ गया, तेरी दादी साहब के जमाने का ये पुराना मटका था, मटका तो पूरा घी खा खा के मोटा हो गया था, मटका फूटा और फिर जान लगा कि मैया मारेगी, तो मटके के दूध के ऊपर क्या करना चाहिए, माँ को ये दिखाना चाहिए कि मैं भूखा था इसलिए दूसरे कमरे में जाके जो माखन ऊपर टंगा था उसको खाने के लिए तैयार हो गया। और माँ यहाँ से वापस आके लौटती और ऐसे हंसती है, मैं कितना शैतान हो गया है, बच्चों को घर के बर्तन बचाने चाहिए अभी से फोड़ना शुरू कर दिया। उसको हंसी आ गई और फिर एकदम भय हो गया कि इसको कहीं डर के मारे, सुबह 5 बजे है, भूखा है, कुछ खाया नहीं है और मुटका फोड़ा है तो भाग जाएगा जंगल में, तो कहाँ ढूंढूंगी, जाके पकड़ लेती हूँ, कहाँ गया। माँ ने देखा भगवान के चरणों के निशान को उस गिरे हुए मही के ऊपर, तो हाथ में दूसरे कमरे में देखे तो बंदर है कौए हैं, अरे यही होगा ये बंदरों का मित्र है। तो लाठी हाथ में उठाई, उस कमरे में गया तो देखा उखल के ऊपर बैठा है, माखन को उतारा है और ऐसे बंदरों को खिला रहा है, कौओं को फेंक रहा है और ऐसे देख रहा है कि भैया आ तो नहीं, ये पीछे बड़ा सतर्क बैठा हुआ है। माँ ने पीछे पांव दबा के कहा इसको भागने से पहले पकड़ती हूँ, लेकिन वो इतना होशियार था, माँ पीछे आई उसे पहले कूदा ऊपर से और कूद के कूद के कूद के बाहर गया और मैया पीछे दौड़ी। पहले तो घर के अंदर 2-3 चक्कर लगाए जैसे और फिर घर के दरवाजे से बाहर गया, बोला बाहर तो मैया नहीं आएगी ना, उस दिन मैया बाहर निकल के चली गई। अब आगे बच्चा पीछे मैया दौड़ रही है और गोपियां बाहर देख रही हैं, नंद रानी को क्या हो गया, बच्चे के पीछे लाठी उठा के क्यों घूम रही है, उनको कौतूहल मजा लगा, वो भी बाहर आगे खड़ी हो गई और गोपी ने पीछे से जाके पकड़ लिया और पकड़ते ही बोला मस्का फोड़ा, बोला नहीं फोड़ा, तुम्हारे पांव में इतना चांदी का बड़ा डालती हो ना कड़ा, तुम जा रही थी वो लगा उससे टूट गया, मुझे क्या पता है। ये लिखा है रूप गोस्वामी ने गोपाल शंपू में, कृष्ण खुश, बोला बंदरों को मक्खन खिलाया, बोला नहीं, जिसने बंदर बनाया वो खिला रहा था, और तुम बंदर के बंदर हो, बोला हाँ, तो मैं जाऊं जंगल में, बंदर जंगल में रहते हैं ना, ऐसे जो मां से बात करने लगा, मां बोलती आज तक तेरे को मैं बांध के रखूंगी, तुमको खेलने जाने नहीं दूंगी। और मैया ने अपनी चोटी से बहुत एक छोटा धागा निकाला, उखल में बांध दिया और उखल से कमर में बांधने के लिए दूसरा धागा निकाला, अरे दर्द दो उंगल धागा छोटा हो गया, एक और ले आओ तो रस्सी, दूसरी रस्सी आ गई, रस्सी रस्सी में जोड़ी, दो उंगल छोटी हो गई, 3, 4, 5 पसीना हो गया। यशोदा कहती है क्या है, रस्सी छोटी नहीं हो रही है, पेट मोटा नहीं हो रहा है, बंद क्यों। वो गोपियां कहते हैं ए नंद रानी इसके भाग में बंधन नहीं दिखे, अब खुश हो जाओ, छोड़ दो बच्चे को, बोला तेरे घर में माखन खाता है तब आके मेरे को कहती हो कि चुरा कर रहा है, मेरे घर का खाया है तब तो मजा आता है कि इसको छोड़ दो, आज इसको तो बांध के रखूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब जब कृष्ण ने ये सुना तब पहली बार मां की ओर देखा और देखा पसीने से लथपथ मेरी माँ और मुझे बांधने को चाहती है, तब भगवान ने अपनी अनुग्रह की शक्ति प्रकट हो गई, संकल्प शक्ति जो नहीं बांधने दे रही थी वो तो भाग गई और मां ने गांठ लगाई और भगवान बंध गए। अब भगवान जो बंध गए तो ये दो उंगल रस्सी क्यों छोड़ती है, इसके ऊपर भी 20-25 कारण लिख दिए हैं आचार्यों ने। लेकिन तो एक मुख्य कारण ये है कि एक उंगल भक्त का परिश्रम, जब भक्त प्रयास करेगा भगवान को पाने का और जब पसीने से लथपथ होकर थक जाएगा और भगवान देख ले उसको, तो फिर दूसरा उंगल भगवान की कृपा और अनुग्रह, ये दोनों इकट्ठे होते हैं तब भगवान हाथ में आता है। हमको भी परिश्रम करना चाहिए तब भगवान का अनुग्रह होगा। और फिर मैया ने कहा जाके थोड़ी रोटी बना लूं और मक्खन बना के इसको खिलाना पड़ेगा। मैया तो अंदर चली गई, छोटे छोटे ग्वाल बाल आए, कहने लगे कन्हैया खेलने चले, बोले देखो बचा हुआ हूँ। अच्छा खेलते हैं, इसको टेढ़ा कर दो। टेढ़ा किया, कन्हैया को याद आया, अरे वो देखो मेरे मित्र, एक तो अभी अर्जुन मित्र है, एक आगे अर्जुन मित्र कुरुक्षेत्र में होगा गीता सुनने वाला, उसके नाम से ये दो वृक्ष पड़े हैं, इनका तो उद्धार करना चाहिए। मेरे भक्त नारद ने इसको वरदान दिया है, मैं तो उसी के कारण बंधा हूँ, नारद के वचनों से बंधा हुआ हूँ। और दोनों वे पैरों के अंदर बीच में से निकल के उस तरफ चले गए, और जैसे उधर पहुंचे दोनों पैरों से निकल कर न पांव लगाया, भगवान के सिर्फ चरण लगे, उखल अटका, दोनों पैर धड़ाम से गिरे, दोनों पैरों से दो देवता निकले, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया भगवान को, भगवान की परिक्रमा की, बच्चे सब देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद बहुत बड़ा आवाज हुआ, नंद बाबा भागते हुए आए, दो बड़े पेड़ों के बीच में छोटे लाला को देखा तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बच्चे को खोला, गोद में उठाया, कंधे के ऊपर चढ़ाया और मुस्कुराया कि बच्चे को डर न लगे। उसने बोला बेटा तेरे को बांधा किसने? वो नीचे अदारी को ऐसे पकड़ के कान में बोलता है मैया ने बांधा, मैया ने बांधा। मैया के पास नहीं जाऊंगा अभी, नहीं बाबा आप मैया के पास नहीं जाऊंगा, आपके पास। और लाके गौशाला में मिश्री मुंह में डाल के दूध पिलाया नंद बाबा ने। ये सुबह का टाइम है 6-7 बजे का। अब तो ये दो पेड़ों के गिरने की जब कथा यहाँ शुरू हो गई तो वहां यशोदा बिचारी मूर्छित होने लगी, रोहिणी बुलाने के लिए आई, कन्हैया जाए नहीं, तो अब कन्हैया के अंदर यशोदा के प्रेम को प्रकट करने के लिए नंद बाबा गोद में उठाए, कहते ठीक है प्रीति तुम्हारी मैया को अब हम हाथ ऊपर उठाया थे, अब तो उनको हाथ को पकड़ के कृष्ण का नहीं हो, कूद के सीधा यशोदा की गोद में चले गया। और यशोदा रोने लगी, यशोदा रोती है, सब परिवार इकट्ठा हो गया। अब ये दामोदर लीला यहाँ समाप्त होती है। सब कृष्ण कहता सुबह मेरे को रुलाती है, शाम को खुद रोती है, ये तुम्हारी प्रेम की दोनों की लीला है। सब परीक्षित महाराज कहते हैं ये दो पेड़ से देवता निकले ये कौन से? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये तो कुबेर के बेटे थे जो धन का देवता है, और ये भगवान शंकर के अनुचर थे, और इतने बड़े होने के बाद भी शराब पी के लाल आंखों से अप्सराओं को लेकर मंदाकिनी गंगा जिसमें लोग पाप धोने जाते उसमें पाप कर्म कर रहे थे। वहां नारद जी का गीत है, उसका नाम है नारद गीत। नारद ने कहा वैसे तो संसार के अंदर उच्च कुल में जन्म, बड़ी विद्या, सुंदरता और धन, ये चार बड़े नशे हैं। इन चारों में से धन के मद का अंत बहुत बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए इसको ये नशा चढ़ गया है, इसको उतारने के लिए क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है? बोला दरिद्रम अंजनम। अब जब इसके पास कुछ नहीं होगा तब इसको पता लगेगा कि क्या होता है। तब नारद ने जीत गाया शराब नहीं अनुग्रह करके दोनों को कहा के तुम निर्वस्त्र रहना चाहते हो जाओ पेड़ बन जाओ। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा देव ऋषि हमारे ऊपर कृपा करो, ठीक है अब नंद भवन में पेड़ बनना, कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो ये दो कुबेर के बच्चे नल कुबेर और मणिग्रीव, इनके ऊपर भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया। यहाँ गोकुल में एक बाकी और लीला होने वाली है, लोग सब इकट्ठे हो गए। गोकू ने कहा देखो पूछना आई तृणा बताया सच्चा सुर, अभी ये देखो बड़े पेड़ गिरा दिए, यहाँ बच्चे के लिए बहुत खतरा है। तब तक एक मथुरा की ग्वालन फल बेचने के लिए आई, उसको कृष्ण देखने का इतना शोक था, इतना इच्छा थी, वो हार हर के ऊपर टोकरी रखी है, टोकरी में रखा है, बोला तो सेब ले लो, केला ले लो, और फिर कहती गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। नहीं बोले मेरे को कौन बेच रहा है? वो घर में छोटा सा लाला बाहर भागते हुए आया और घर से दो चार दाने दे के अंदर से बाहर आया, गेहूं के हाथ से सब गिर गए। वो नटखट बाहर कहता है मैया ये दाना लो फल दो। अरे माँ ऐसे बच्चे को देख रही है दाने को नहीं देख रही है, देखते देखते कह पहले मेरे गोद में आओ, मेरे को मैया बोलो फिर फल दूंगी। अब मैया तो बड़ा प्रेम था, कहना ये नहीं इधर देखा उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, कूद के उसकी गोद में गया, मैया नीचे उतरा वापस फल दूंगी। अब तो वो ग्वालन जितना फल था उसके अंदर डाला, ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ फल अंदर गया, गोपियों ने देखा इतना सारा फल कैसे लाया, इतने दाने का पूरा वो मैया ने दिया। गोपियां बाहर जाके देखें तो मैया अभी तक ऐसे कृष्ण क्या वो देख रही है। मैया वहां से टोकरी उठाई, कहा कि जाओ मैया यमुना के किनारे आई, टोकरी भारी पड़ी है, इतना सारा फल ले गई कि अभी बाहर था नीचे उतार के ऐसे कपड़ा हटाते तो अंदर हीरे मोती माणक पड़े हैं। अरे भगवान को फल दिया, उसने हीरे मोती दे दिए, मेरे को माया में फंसा दिया, टोकरी उठा के जमुना में डाली और बावरी होके गोकुल की गलियों में गोपाल गोपाल करती फिर रही है। और यहाँ गोकुल ने मीटिंग की कि यहाँ बच्चे के लिए थोड़ा सेफ्टी नहीं है, चलो हम ये जगह ही छोड़ते हैं। एक बच्चे की सुरक्षा के लिए गोकुल ने पूरा गोकुल खेत खलियान घर परिसर छोड़ दिया, गाड़ियों के ऊपर सामान लादा और चले वृंदावन। और ये गोपा के क्षतिग्राम में रुके हैं। है क्या बच्चा कीर्तन वाला, कोई कीर्तन है फटाफट? हरे कृष्ण। अब हम वृंदावन की लीलाएं का श्रवण करेंगे।